हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 2। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसि नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविश्ववे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि భక్తశాంతికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణ్ కి జయ. అధ్యాయ దో స్కంద దో అధ్యాయ దో శ్లోక్ నంబర్ దో. ఇన్ అత్యంత హీ పవిత్ర శబ్దం కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ కరణే కా ప్రయాస్ కీజియే. శుక్దేవ్ గోస్వామి మహారాజ పరీక్షిత్ సే ఇన్ భౌతిక జగత్ మే జో వ్యక్తి వేదో కే అనుసార్ విభిన్న వస్తువు కో ప్రాప్త కర్నే కీ చేష్టా కర్తే హై యా వేదో మే అలగ్ అలగ్ మార్గ క్యో బతాయా గయా హై ఉస్కే విషయ మే అత్యంత సుందర వ్యాఖ్యా కర్ రహే హై. శుక్దేవ్ గోస్వామి కహతే హై, శబ్దస్య హి బ్రహ్మణ ఈశ పంథా యన్నామభిర్ధ్యాయతి వీర పార్థై పరీభ్రమస్తత్ర నవింద తీర్థాన్ మాయామయేవా సనయాశయాన్. శబ్దస్య హి బ్రహ్మణ ఈశ పంథా యన్నామభిర్ధ్యా యతి ధీర పార్థై పరి భ్రమస్తత్ర నవింద తీర్థాన్ మాయామయేవా సనయాశయాన్. శబ్దస్య హి బ్రాహ్మణ ఈశ పంథా యన్నామభిర్ధ్యా యతి ధీర పార్థే పరి భ్రమస్తత్ర నవింద తీర్థాన్ మాయామయేవా సనయాశయాన్. శబ్దాత్ శబ్దస్య హి బ్రహ్మణ ఏష పంథ. శబ్దస్య అర్థాత్ వైదిక ధ్వని కా హి నిశ్చయ హి బ్రహ్మణ యని వేదో కా ఏష పంథ, ఈ జో మార్గ హై. యన్నామ భేర్ధ్యార్యతే ధీర పార్థ, యన్నామ యన్ జో హై, యన్నామ భీ యని విభిన్న నామో సే ధ్యాయతి ధ్యాన్ కర్తా హై ధీ బుద్ధి అపార్థ వ్యర్థ కి విచారో సే పరిభ్రమన్ పరిభ్రమస్తత్ర న విందతే థాన్. పరిభ్రమస్తత్ర లోక్ తో ఘూమ్తే రహతే హై ఢూంఢతే రహతే హై తత్ర వహాన్ తత్ర న విందతే మగర్ వహాన్ పర్ కభీ భీ నహీ విందతే యని భోగ్ కర్తా అర్థాన్ వాస్తవిక వస్తువు కా మాయామయే వాసనయా శయాన. మాయామయే యని విభిన్న ఇచ్ఛాఓ సే ఈ జో మోహిత్ హోకర్ మోహమయీ వస్తువుఓ మే విభిన్న ఇచ్ఛాఓ సే మోహిత్ హోకర్ శయాన యని మనో నిద్రా మే స్వప్న దేఖ్ రహా హై. అనువాద్ వైదిక ధ్వనియో యని దేవవాణి కో ప్రస్తుత్ కర్నే కీ విధి ఇతనీ మోహనే వాలీ హై కి యహ వ్యక్తియో కీ బుద్ధి కో స్వర్గ జేసి వ్యర్థ కీ వస్తువో కీ ఓర్ లే జాతీ హై. బద్ధ జీవ్ ఏసీ స్వర్గిక మాయామయీ వాసనాఓ కే స్వప్న మే మండరాతే ఫిర్తే లేకిన్ ఉన్హే ఏసే స్థాన్ మే వే సచ్చే సుఖ కీ ప్రాప్తి నహీ కర్ పాతే. శ్రీల ప్రభుపాద్ బహుత్ హీ సుందర రీతి సే సమ్జాయేంగే తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ కేతే బద్ధ జీవ్ భౌతిక సంసార్ కే భీతర్ బ్రహ్మాండ కీ సీమా తక్ భీ సుఖ కే లియే తరహ తరహ కీ యోజనాయే బనానే మే సదే వ్యస్త రహతా హై. వహ ఇస్ పృథ్వీ గ్రహ పర్ ఉపలబ్ధ వస్తువో సే భీ సంతుష్ట నహీ హోతా జహాన్ ఉస్నే ప్రకృతి కే సంసాధనో కా శోషణ అప్ని శక్తి కే అనుసార్ మహత్తమ్ మాత్రా మే కియా హై. వహ చంద్రమా या शुक्र लोक में भी वहीं के संसाधनों के दोहन के लिए जाना चाहता है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता 8.16 में कह दिया, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। वे इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 8.16 में इस तरह के ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्रणालियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के सुख दुखों से यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक भी और स्वर्ग लोक जैसे लोकों का तो कहना ही क्या, ये सारे लोक रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए होते हैं, अतएव वे कभी ब्रह्म लोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले में चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को यह सांसारिक कष्ट सहन नहीं करने पड़ते। अतीव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति सच्चित आनंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। ना तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, ना वहाँ पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत हैं, अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगु लंघयति किरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीमद् भागवतम महापुराण दूसरा स्कंद, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की धारणा की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा, एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससजे दममोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि। कि केवल भगवान की धारणा करके, भगवान के विषय में चिंतन करके, भगवान के प्रति अपने मन को और बुद्धि को आकर्षित करके जीव को संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकते हैं, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे कुछ भी हो। जो कुछ भी हमें चाहिए वो केवल और केवल भगवान की धारणा से ही संभव है। एक व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकता है, अद्भुत अलौकिक क्षमता प्राप्त कर सकता है केवल भगवान की धारणा से। एक व्यक्ति, जहाँ पर बताया कि केवल एक ब्रह्मा जी जो एक व्यक्ति हैं, विश्व के निर्माण करने के लिए उन्होंने शक्ति प्राप्त कर दी। एक हनुमान जी जिन्होंने भगवान श्री राम का ध्यान करके संपूर्ण लंका को विध्वंस कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर पूरे विश्व को भगवान के प्रेम में डिबो दिया। तो केवल कोई साधारण व्यक्ति भी भगवान का ध्यान करके उसमें अद्भुत कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो मानो यहाँ पर कोई प्रश्न उठ सकता है, जब भगवान का ध्यान करना ही जीवों का वास्तविक लक्ष्य है, उसी के द्वारा संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, तो फिर वेदों में अलग अलग प्रकार के लक्ष्य का वर्णन क्यों किया गया है? वर्णाश्रम धर्म के विषय में, स्वर्ग जाने के विषय में, और भौतिक वस्तुओं को किस तरह से प्राप्त किया जाए, किस किस देवताओं की शरण में जाना, ये सब क्यों बताया गया? तो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि क्योंकि जीव को भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए वेद कृपा करके जीव को शुभ कर्म में लगाना चाहते हैं। केवल इतना ही है वेद लिखने का कारण कि क्योंकि जीव संसार में आकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, अगर उसको वैदिक क्षेत्र में रहकर उसको इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा तो वो क्या करेगा, वो गलत तरीके से वही इंद्रिय तृप्ति करेगा। जैसे एक बेटा हो, उसका बाप राजा हो, अभी बेटे ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब वो बाहर जाकर वो क्या करेगा, कुछ न कुछ गलत कार्य, क्योंकि उसके पास उसको इंद्रिय तृप्ति तो करनी है, तो कोई ना कोई गलत कार्य। फिर राजा क्या करता है, अपना एक मंत्री भेजता है, उसको बताता नहीं है कि ये मेरा मंत्री, मतलब कुछ ऐसे बताएगा कि, तो मंत्री को बोलेगा ठीक है भले मेरा बेटा है, मेरी आज्ञा को पालन नहीं करता, लेकिन तुम उसको कुछ गलत मत करने देना, तुम इसको इन्हीं जो भी उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, जो भी भोग करना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देना और तुम उनकी सहायता करना ताकि वो गलत राह पर ना चला जाए। उसी तरह से हम इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान की तो भक्ति करना स्वीकार नहीं किया, भगवान ने अपने राज्य से निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमें वैदिक संस्कृति दी और उस वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारी जो इंद्रिय भोग की इच्छा है, जीव मात्र जो कि इंद्रिय भोग की इच्छा लेकर आया है, तो उसको एक सही डायरेक्शन के कहीं वो वही कार्य गलत तरीके से ना कर ले, वही इंद्रिय तृप्ति करनी है उसको तो गलत तरीके से ना कर दे, कम से कम वो वैदिक संस्कृति में रहकर कर। परंतु जैसा कि हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, वेद व्यास जी ने जब सारे वेदों का निर्माण कर भी लिया, उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं हुई थी, इसीलिए वेद व्यास जी ने 1.1.2 में बताया था, धर्म प्रोजित कैतवो तपरमो निर्मत सराराम सता। ये जो श्रीमद् भागवतम है वो शुद्ध भक्तों के लिए, जिनके अंदर कोई अन्य इच्छा नहीं, इसके अंदर कोई केतव नहीं है, इसमें केवल और केवल भगवत प्रीति की बात बताई जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो कि वेद व्यास ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखी है, उसको पढ़ने के अतिरिक्त और कोई ऐसी शास्त्र नहीं है जिसको पढ़ के आपको वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। तो वेदों में जो बताया गया उसके विषय में कहते हैं, शब्द से ही ब्राह्मण से एष पंथा। शब्द से कहते हैं जो वैदिक ध्वनि है, जो ब्राह्मण यानी जो वेदों के शब्द है, एष पंथा, वो उसमें जो बताया गया है कि ये कर लोगे तो ये सुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा सुख मिलेगा। तो अभी असल में क्या है, मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है कि क्षणभंगुर सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्षणभंगुर वस्तु को ही चाहती है। क्यों? लेकिन यहाँ पर बताया कि उसके अंदर सुख नहीं है, जीव को भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जो शब्दस्य ब्राह्मणस्य, ये जो शब्दस्य यानी वेद की तो स्टाइल है, वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे धीरे 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 भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके फिर आगे बढ़ के ऊपर उठेगा और जीव जो है वो भगवान को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है अभी भगवान के विषय में श्रवण करने की, तो जिस चीज की इच्छा होगी वो प्राप्त करते करते आखिर उसे पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यन नाम अभिर ध्यायति धीर पार्थ है। यन नाम अभिर यानी कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, जिसको हम समझते हैं कि ये सुख है इसके द्वारा सुख मिलेगा या नाम भीर नाम मात्र का सुख है। शास्त्र कहता है कि इस भौतिक जगत में चाहे किसी भी ब्रह्मांड में चले जाओ कोई वास्तविक सुख नहीं है। यह नाम अभी ध्यायति धीर पार्थ है, केवल इसके अंदर धीर पार्थ है यानी उसके अंदर कोई वास्तविक सुख नहीं है, उसके अंदर व्यर्थ हमारा ये विचार है, हमारी बुद्धि व्यर्थ का विचार करती है। धी अपार्थ का मतलब होता है एकदम फिजूल की बात है ये सोचना कि इन वस्तुओं के अंदर हमें दुख मिलेगा। यह साफ साफ बताया यह नाम अभी खाली नाम मात्र का सुख है, इसका नाम खाली बताया गया है कि ये सुख प्राप्त करने की चीज है, इसके ऊपर लिख दिया गया खाली कि ये मीठा है। अभी उसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो हमें दुख देने के लिए, स्पेशली ये संसार में जो वस्तुएं डेकोरेट करके रख दी गई है ना वो चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना दिखती हो लेकिन वास्तव में वो हमारे दुख का कारण है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं बताया गया कि इस भौतिक जगत में कोई ऐसी वस्तु है जो आपको आनंदित कर सकेगी, है ही नहीं ऐसी कोई वस्तु इस संसार में जो हमें सुखी कर सके। कोई सुख नहीं है, कोई भी भोग नहीं है जीव के भोगने के लिए इस भौतिक जगत में, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करके हमें आनंद आए। बस क्या है ये यन नाम अभिध्यायते, केवल ऐसा है जैसे एक जहर की बोतल हो और जहर की बोतल के बाहर लिख दिया जाए कि ये अमृत है, भले ही जो कुछ भी दिख रहा है वही हमारे विनाश का कारण है, वही हमारे लिए दुख का कारण है, ये भगवान ने कह दिया। 5.22 में भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख कयो नय एवते, वास्तव में वो जहर है लेकिन तुम्हें लग रहा है कि इसे खाकर तुम्हें आनंद आएगा, ये तुम्हारी भूल है क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई ऐसी वस्तु मैंने बनाई नहीं है जो कि तुमको आनंद दे सके। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई भी भोग नहीं इस भौतिक जगत में, कोई भी सुख नहीं, बस नाम मात्र लिख दिया गया है और केवल ऐसा बताया गया है कि इस वस्तु के प्राप्त कर, ऐसा हमारी बुद्धि जो है लिखा हुआ है ना कि धीर पाठ है, हमारी बुद्धि ऐसा निश्चय करती है कि ये वस्तु प्राप्त करके मुझे आनंद आएगा, ये हमारी फिजूल की सोच है, कोई वस्तु प्राप्त करके आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि ज्ञान प्राप्त करने के तीन स्तर हैं। ज्ञान केवल प्राप्त करना है तो किस बारे में, पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिदया और तीसरा है प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भौतिक सृष्टि क्या है, भौतिक सृष्टि के साथ मेरा क्या संबंध है और भगवान का भौतिक सृष्टि से क्या संबंध है, ये ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि जो वेदों में भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लिखा हुआ है वो तो सब मेटेरियल शरीर के लिए, क्यों अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने आप को देह ही मान रहा है, देह मानकर शरीर को ही खुश करने के लिए चेष्टाएं कर रहा है, जब अपने आप को जाना ही नहीं तो क्या खुशी प्राप्त करेगा, क्या उसे आनंद आएगा जब उसे अपने विषय में नहीं पता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि जीव ये जान ले कि मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध भगवान के साथ है कि मुझे भगवान को, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान को आनंदित करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। और दूसरा स्तर क्या है, अभिदेह। अभिदेह मतलब जब हमें ये पता हो जाए कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, तो फिर प्रोसेस ऑफ भक्ति करना है, क्या करना है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तेर श्रद्धार सेवा, ये पांच कार्य करने के लिए महाप्रभु ने हमें कहा कि सबसे पहले साधु शुद्ध भक्तों का संग करो, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो, भागवतम को श्रवण करो, भगवान के उन दिव्य स्थानों का में वास करो और भगवान की श्री विग्रह की सेवा करो। ऐसा करते करते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस तरह से नवधा भक्ति को क्रॉस करके भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ। सख्यम दास्यम आत्म, मतलब कोई भगवान के साथ सखा रूप में या दास रूप में या वात्सल्य रूप में या माधुर्य भाव में किसी तरह से संबंध बनाओ। और इस सब करने का क्या प्रयोजन है? अंतिम स्तर है प्रयोजन। प्रयोजन हमारे जीव का केवल इतना ही होना चाहिए कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति करें, यही वास्तविक लक्ष्य है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके हमें दुख, हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे, उसका संभव ही नहीं है। क्योंकि उन भौतिक वस्तुओं में दुख तो उनके अंदर ही सम्मिलित है, सुख तो केवल नाम मात्र है। यन नाम, यहाँ साफ साफ लिखा, यन नाम भिर्ध्यायति धीर पाठ है। हमारी बुद्धि ऐसे सोच रही है कि शायद इसका नाम सुख है तो इसके द्वारा मुझे सुख मिलेगा, लेकिन है नहीं, इन किसी भी भौतिक वस्तुओं में कोई भी सुख नहीं है। वास्तविक सुख का सागर भगवान श्री कृष्ण है, रसो वैसे वो आनंद का समुद्र है। वो भगवान श्री कृष्ण जिनको प्राप्त करके जीव वास्तव में आनंदी भवती, वास्तव में आनंदित हो सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु एक अत्यंत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वे कहते हैं एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी था, और क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो वहां पर एक ज्योतिषी आया। जो ज्योतिषी होते हैं ना, उसने बोला तुम्हारा दुख दूर करने का मेरे पास एक तरीका है कि तुम बहुत दुखी हो ना, तुम्हारे पिता के पास बहुत बड़ा खजाना था और वो जो खजाना है वो एक जगह पर गाड़ के आए हैं। उनके पिता ने एक खजाना जो है वो एक धरती में खोद के उस जगह पे गाड़ दिया था। तब उसके पुत्र ने कहा तुम्हें लगता है कि इतना समझने से या इतना सुनने से मेरा दुख दूर हो जाएगा? ऐसे अगर आपको पता चले कि भाई भगवान को प्राप्त करने से आपका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन प्राप्त करने का क्या तरीका है वो पता होना चाहिए ना। ये तो सब जानते हैं कि भगवत प्राप्ति से ही आनंद प्राप्त संभव है, लेकिन उसका तरीका क्या है? तो फिर ज्योतिषी बोलते नहीं, मैं तुम्हें सारा तरीका भी बताऊंगा। देखो, वो जगह प्राप्त करने के लिए चार रास्ते हैं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूरब। अगर तुम पश्चिम के रास्ते से जाओगे तो वहां पर बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो कि तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, दुख देंगे, तुम नहीं वहां से प्राप्त नहीं कर सकोगे, वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो बोला मैं दक्षिण रास्ते से जाऊं? बोला नहीं, दक्षिण रास्ते में एक भूत है, वो तुम्हें रियल आनंद तक जाने नहीं देगा। बोला फिर उत्तर दिशा में जाऊं? बोला नहीं, उत्तर दिशा में नहीं जाना, वहां पर एक बहुत बड़ा भयानक सांप है, उस तरफ से जाओगे तो वो सांप तुम्हें डस लेगा। बोला पूरब से जाओ ना, पूरब वाला जो रास्ता है वो बहुत सरल है, वहां पर थोड़ा सा परिश्रम करके आपको खजाना मिल जाएगा। तब चैतन्य महाप्रभु अत्यंत ही सुंदर इस दृष्टांत को समझाते हैं। वे कहते हैं ये सब रास्ते वेदों में वर्णित हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग बताया। पहला बताया कर्म कांड के रास्ते से। अभी कर्म कांड का रास्ता क्या है? वेदों में बताया कि ये कर लोगे तो इस देवता की पूजा करोगे तो धन मिलेगा, इसकी पूजा करोगे तो पति मिलेगा, इसकी पूजा करोगे तो पुत्र मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते करते करते, वेदों का ये विचार है कि ऐसे करते करते क्या होगा कि जीव थक जाएगा इंद्र तृप्ति से, और फिर क्या करेगा, भगवत प्राप्ति की चेष्टा करेगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, ये जो कर्म कांड है वो इतने खतरनाक कीड़े हैं इंद्रिय तृप्ति के कि जितना जितना जीव इंद्रिय भोग करता जाता है और भी उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। ये पश्चिम का रास्ता कर्म कांड का है, तो ये कीड़े जो हैं वो उसे वास्तविक लक्ष्य की ओर जाने नहीं देंगे, इसलिए कर्म कांड का रास्ता भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन है और उसका फल दुखी होगा, जितना भी प्राप्त कर ले तो दुखी होगा। फिर है दक्षिण रास्ता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दक्षिण रास्ते में एक भूत है। ये क्या है? दक्षिण रास्ता ज्ञान मार्ग है कि ज्ञान प्राप्त करना कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे भगवान के अंदर लीन होना है, और वो स्वयं भगवान के अंदर लीन होकर स्वयं भगवान बनना चाहता है। ये बहुत बड़ा भूत है कि अपनी वास्तविक स्थिति की मैं भगवान का दास हूँ वो भूल जाए, और जिस तरह से किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है ना, तो वो उसी की भाषा बोलने लगता है। तो इसके ऊपर जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनके ऊपर भी ये भूत सवार हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, तो वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो भूत जो है वो रियल आनंद प्राप्त करने नहीं देगा। और बोला उत्तर दिशा में एक बहुत भयानक सांप है, वो डस लेगा। तो उत्तर दिशा में क्या है, अष्टांग योग पद्धति है, ध्यान योग पद्धति है। उस ध्यान योग में क्या होता है कि जीव को सिद्धि प्राप्त होती है, कभी अणिमा लघिमा या फिर अलग अलग सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं, तो उस सिद्धियों में ही वो जकड़ जाता है। वो सिद्धियों में इतना आनंद प्राप्त करता है उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने ये जो ध्यान योग स्टार्ट किया था वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए किया था। तो ये सारे जो रास्ते हैं, चाहे कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, अष्टांग योग सिद्धि का कांड हो, जो भी हो, लेकिन ये रास्ते बहुत भयानक हैं, बहुत खतरनाक हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पूरब से जाओ। पूरब में क्या है, भक्ति मार्ग है। ये बहुत ही सरल रास्ता है। इसमें क्या करना है, केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, और यही परिपूर्णता है। ज्ञान की परिपूर्णता यही है कि हम भगवान की भक्ति करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9.17 में बोलते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। जो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, कौन सा ज्ञान, संबंध ज्ञान, कि मेरा भगवान के साथ संबंध है, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो फिर वो क्या करता है, एक भक्तिर विशिष्यते, वो एक ही भक्ति करता है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच ममत प्रिया, वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो वास्तविक ज्ञानी यही है जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को स्वीकार करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये सारे जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ध्यान कांड है, वो करने के बाद वो ज्ञानी बना है। बहुनाम करोड़ करोड़ जन्मों के बाद तब जाके वो ज्ञानी बना है और वो मेरी शरण में आया है, माम प्रपद्यते। तो ये कितना आसान तरीका है, अत्यंत ही आसान है कि केवल भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम जपना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, उसी से कृष्ण संभव है। लेकिन ये कृष्ण प्राप्ति इतनी सरल होते हुए भी जीव क्या करता है, वे कहते हैं परिभ्रमस्तत्र नाविंद तीर्थान, परिभ्रमस्तत्र वो सदैव घूमता रहता है। जीव आनंद की खोज करता रहता है, कभी सोचता है न्यूयॉर्क में सुख मिलेगा, कभी बोलता है लॉस एंजलस में सुख मिलेगा, कभी बोलेगा सिंगापुर में सुख मिलेगा, कभी बोलेगा कनाडा में सुख मिलेगा, कभी बोले अमेरिका में सुख मिलेगा, कभी बोलेगा कहाँ पर सुख मिलेगा। ऐसे करते 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 परिभ्रमस्तत्र, परिभ्रमस्त्र मतलब का भ्रमण करना, मतलब घूमना, लेकिन परिभ्रमण मतलब प्रत्येक जन्म में यही करता है। वो सोचता है कि कोई तो ऐसी भौतिक जगह होगी जहां पर मुझे आनंद आएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि पहले वो भौतिक जगत में आनंद सोच ढूंढता है, लेकिन उसे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख बहुत सताते हैं। फिर वो सोचता है मैं चंद्र पर चला जाऊं, मैं सूर्य लोक में चला जाऊं, मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊं। बहुत चेष्टाएं करता है, बहुत बहुत चेष्टाएं करने के बाद भी कभी कोई ऐसा स्थान उसे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने कह दिया 8.16 में ब्रह्म भुवना लोका पुनर आवृति नोर्जुना, चाहे तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारे दुखों का शमन कभी भी नहीं होगा। कोई ऐसी जगह नहीं है इस भौतिक जगत में जहां पर दुख न हो, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम सुख प्राप्त कर सके। इसलिए बताया यन्नाम अभिध्यायते धीर पार्थ है, केवल और केवल हमारा ब्रह्म है, हम केवल नाम है उसका कि इसके द्वारा सुख मिलेगा, लेकिन चाहे कुछ भी। विंदतीर्थान न विंदतीर्थान, न विंदते मतलब नहीं प्राप्त कर सकोगे, नहीं मिलेगा अर्थान मतलब वास्तविक सुख। भले कितना ही जीव घूमता रहे, भटकता रहे, भौतिक वस्तुओं एक को छोड़ के दूसरी को प्राप्त करके आनंदित होने की चेष्टाएं करता रहे, इतने जन्मों तक करता आया है और भी उतने जन्म निकाल दे, लेकिन संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने रखा ही नहीं है इन भौतिक वस्तुओं में आनंद। भगवान ने साफ कह दिया, अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वतम लोकम। भगवान के शब्द हैं, लेकिन जीव इतना बेवकूफ है कि भगवान की इन शब्दों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा सोच रहा है, हमेशा क्या सोचता है, उन्हीं वस्तुओं के चक्कर में पड़ा रहेगा। व्यक्ति रात दिन यही सोचता है, बस ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु प्राप्त कर लूं कम दाम में मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। ये वास्तव में दुख का कारण है। नाम भोग है परंतु है दुख। इस संसार में कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती है, ये शास्त्र चीख सीख कर बता रहा है। लेकिन जीव पूरी जिंदगी बूढ़े हो जाते ना, फिर भी भजन नहीं करते। किसी से पूछो, भाई आपके बूढ़े दादाजी घर पे सारा दिन क्या करते? बहुत रिच लोग होंगे ना, बहुत अमीर होंगे तो भी क्या करेंगे, आधा दिन तो टीवी देखने में लगाएंगे, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्फ खेलने के लिए जाएंगे या फिर अपने कुत्तों को गार्डन में लेके जाएंगे। बस इसी तरह से सुख प्राप्त करना चाहता है जीव, इन्हीं भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढता है जहाँ पर आनंद है ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में अत्यंत ही सुंदर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इस संसार में जिस जिस वस्तु से आप प्रेम करते हो, जिस जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, वही वास्तव में आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने आपके वास्तविक प्रेम को बांट दिया है। वास्तविक प्रेम कृष्ण को देने के लिए है, लेकिन वो वस्तु और व्यक्ति जो है वो उस पवित्र कृष्ण प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करा के आपको भगवान के साथ दगाबाजी करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये प्रेम कृष्ण का है, आपको कृष्ण को ही देना है। वहां पर बताते हैं कि एक पुत्र उत्पन्न होता है ना, जब वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका, जो जिस क्यों कैसे बताए कि वो पुत्र अपने माता पिता की संपूर्ण संपत्ति को छीनने के लिए आया है। वो जैसे ही पिता होता है वो अधिकारित हो जाता है आपकी संपूर्ण संपत्ति का। जब पिता मर जाता है तो वो सारी संपत्ति जो उसने बहुत ही मेहनत से कमाई होती है वो सारी पुत्र के नाम पे जाती है ना। अभी पुत्र में और डाकू में क्या फर्क है? एक डाकू आएगा, वो आपको मारेगा, पीटेगा, रिवॉल्वर से धमकाएगा कि भाई मुझे ये सब धन दो, और उसको आप धन नहीं देना चाहोगे, है ना, लेकिन वो फिर भी आपसे ले जाएगा और आपको दुखी करेगा। लेकिन ये पुत्र तो ऐसे होते हैं कि हाँ, उनको अपनी इच्छा से ही अपना सारा धन, अपनी सारी स्ट्रगल, हालांकि हम आत्मा हैं, आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ये विलिंगली हम उनको दे रहे होते हैं। अभी डाकू होगा तो क्या लेगा? थोड़ा धन लेगा, कुछ तो बचेगा, घर तो बचेगा, गाड़ी तो बचेगी, फ्लैट तो बचेगा, मकान तो। लेकिन पुत्र ऐसा होता है जो हमारी हर एक वस्तु पर कब्जा कर देता है। कभी कभी तो पुत्र ऐसे होते हैं जो माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ के स्वयं आके कब्जा करके बैठ जाते हैं, लेकिन हम इस बात को जानना नहीं चाहते, जानते हुए भी समझना नहीं चाहते कि इस भौतिक जगत में जो भी हमें लगता है कि हमें इनके द्वारा सुख मिलेगा, वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो हम अपनी इच्छा से इन दुखों को स्वीकार करते हैं, इन दुखों को अपनी इच्छा से अपने जीवन में लाते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है ना रियल सुख को। यहाँ पर बताया जा रहा है, परिभ्रमस्तत्र न विन्द तीर्थम, इन्हीं भौतिक वस्तुओं में ही जीव घूमता रहता है कि मैं भी इसमें मुझे वास्तविक सुख मिलेगा। तो वो क्या है? माया मयेवा सनयाशयान, ये माया है, केवल ब्रह्म है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। वासनया यानी कि विभिन्न इच्छाओं से वो ऐसा लगता है कि मोहित हो गया है और सारी इच्छाएं करता रहता है कि इन वस्तुओं के द्वारा मुझे सुख मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शयाना, शयाना कहते हैं निद्रा को, जब कोई सो रहा होता है और सपना देख रहा होता है, मानो निद्रा में स्वप्न में, जैसे कोई कंगाल हो, बहुत उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हो, धन नहीं हो, लेकिन वो स्वप्न में क्या सोचता है कि मैं राजा हो गया हूँ, मेरे इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतना सारा धन है, इतनी मेरी सुंदर पत्नी है, मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं। वो चाहे कितना भी सुख अपने स्वप्न में आनंद सुख का ले रहा हो, लेकिन वास्तव में तो वो दुखी ही है ना, वो तो कंगाल है, सड़क पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं सुखी हूँ क्योंकि वो सपना देख रहा है। उसी तरह से हम लोग वास्तव में हम दुखी हैं इस भौतिक जगत में, चाहे कुछ भी मिल जाएगा, वैसे ही है जैसे सपने में उसको राज्य मिल जाए, क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति को आनंदित नहीं कर सकता है। हमारी वास्तविक स्थिति केवल भगवत प्राप्ति से आनंदित हो सकती है, कृष्ण के प्रेम से आनंदित हो सकती है। ये कोई भौतिक बातों से अपने मन को हटाने के लिए एक उपाय नहीं बताया गया, यही वास्तविकता है। यही वास्तविकता है कि हमें कृष्ण प्रेम के लिए चेष्टा करनी चाहिए, इसी से हमें हर प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी ही आनंदित हो सकता है जब हम कृष्ण प्राप्ति की ओर जाएं। ये भौतिक वस्तुएं और व्यक्ति तो जहर की तरह हम लोगों को हमारी जीवन अवधि को खत्म करते रहते हैं, क्योंकि हमें एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए जीवन मिला है और इसी समय में हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, लेकिन हम इन भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं में हम आनंद ढूंढ रहे हैं उनमें बिल्कुल भी आनंद नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद से प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि इन भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं है, आपने कभी इन वस्तुओं का उपयोग किया है? आपने कभी शराब पी है, कभी वाइन पिया, कभी अल्कोहल पिया, कभी आपने सिगरेट पिया है? जब आपने इन वस्तुओं को कभी टेस्ट किया नहीं है तो आपको क्या खबर कि इनमें कितना आनंद है? व्हाई डू यू ब्लाइंडली रिजेक्ट दीज ऑल थिंग्स? आप बगैर ना इनके विषय में जाने आप इनको कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? उसी तरह से जैसे यहाँ हमारे श्लोक में बताया गया कि परिभ्रमण, वो घूमता रहता है, कभी अमेरिका, कभी स्विट्जरलैंड, कभी ना कनाडा, कभी न्यूयॉर्क। तो हमें कोई कह सकता है भाई आपने तो कभी अमेरिका देखा नहीं है, कभी स्विट्जरलैंड देखा नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वहां पर आनंद नहीं है? व्हाई डू यू ब्लाइंडली रिजेक्ट ऑल दिस? उसी तरह वेदों में बताया गया भाई स्वर्ग में बहुत आनंद है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, तो हमने स्वर्ग नहीं देखा तो हम कैसे कह दें कि स्वर्ग में कोई भी आनंद नहीं है? तो ये सब भी तो ब्लाइंडली रिजेक्ट करने वाली बातें हुई ना। तब श्री प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं, क्या आपने भगवान का धाम देखा है? क्या आपने गोलोक धाम देखा है जहाँ पर कृष्ण रहते हैं? जब आपने उस धाम को नहीं देखा तो आप कैसे उसको ब्लाइंडली रिजेक्ट कर रहे हो? हम जिस चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं वो भौतिक वस्तुएं, जिनके विषय में शास्त्र में बताया है, सारे संत बताते हैं, और हम सबका प्रैक्टिकल ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जिसने जितना जितना प्राप्त किया है वो उतना ही दुखी है। कोई तो एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने ये कह दिया हो कि मैंने भौतिक वस्तु या व्यक्तियों को प्राप्त करके आनंद किया हो। कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसने सोचा हो कि इस लोक में या इस घर में या इस कंट्री में पहुंचकर मुझे कोई दुख नहीं मिला। कोई तो ऐसी जगह बता दो जहां पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख ना हो। इतने सारे दुखों के अंदर जब तुम ब्लाइंडली इन आध्यात्मिक जगत को रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन हम तो ब्लाइंडली नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम। भगवान ने कह दिया वो एक जगह जहां पर जाकर तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई कष्ट नहीं मिलेगा। पदम पदम यद विपताम न तेषाम, जहां पर कदम कदम पे, जहां जैसे इस भौतिक जगत में तुम्हें दुख मिलते वहां पर नहीं मिलता, तो फिर ऐसी जगह पर जाने के लिए हम क्यों नहीं परिश्रम करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में तुम आए हो तो इस जगत में दुख ही दुख मिलेंगे, अनित्य है, असुख है, भोग भोग कर अपने जीवन को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल भजस्व माम, मतलब मेरा भजन करो और मुझे प्राप्त कर लो। सारे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो चेष्टा केवल उसी के लिए करनी चाहिए कि मुझे किस तरह से इस जन्म में कृष्ण प्राप्त हो जाए, उसी से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बाकी इस भौतिक जगत में जो देह निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना चाहिए, इसके विषय में बहुत ही सुंदर श्लोक नंबर 3 और 4 में बताएंगे। हम इनको पढ़ेंगे और अपने जीवन को कृष्ण के ओर ले जाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे और भौतिक आसक्ति को समाप्त करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करना कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।